సిద్ధేభ్యః ఓం నమః సిద్ధేభ్యః ఓం నమః సిద్ధేభ్యః నమో అరిహంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో ఆయిర్యాణం నమో వజ్జాయాణం నమో లోయే సౌవ సాహూణం ఏసో పంచ నమో యారో సౌవ పావపణాసనో మంగళాణం చ సవ్వేసిం పఢమం హవై మంగళం పఢమం హవై మంగళం. పంచ పరమేష్ఠి భగవాన్ కీ అహింసా పరమో ధర్మ కీ ఆచార్య గురువర్ శ్రీ విద్యాసాగర్ ముని మహారాజ్ కీ పాఠ తీసరా అర్హంత్ వ సిద్ధ పరమేష్ఠి. पांच परमिष्टियों में प्रथम स्थान अरहंत परमिष्टि का है. यह प्रथम स्थान क्यों है इस बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरहंत परमिष्टि लोकोपकारी है, भव्य जीवों का कल्याण करने वाले परमिष्टि हैं. ये हमारा उपकार करते हैं, इनकी दिव्य ध्वनि खिर करके संसार का कल्याण होता है, ये बातें हम सबको पता है. और संसार में रहने वाले संसारी जीव अपने स्वार्थ को हर जगह देखते हैं. सांसारिक क्षेत्र में भी इन जीवों को स्वार्थ आवश्यक होता है, वहां भी देखते हैं. और परमार्थ क्षेत्र में भी स्वार्थ देखते हैं. जो उपदेश देते हैं उनकी ओर हमारा ज्यादा आकर्षण रहता है, और जो उपदेश नहीं देते उनकी ओर इतना आकर्षण नहीं रहता. इसलिए एकाएकी यदि किसी का आप नाम लेते हैं तो जो सामने उपदेश दे रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, उन्हीं का नाम अपने मुंह से आता है. जिसका संपर्क हम ज्यादा साधते हैं उनका नाम स्वाभाविक रूप से ही सामने आता है, और वही ध्यान में आते हैं और उन्हीं को हम याद करने लगते हैं, और फिर वो चले भी जाएं तो उन्हीं को हम जपने लगते हैं. तो यूं ही जिन्होंने संसार दशा को पार किया है अरहंत भगवान से भी बड़े माने जाते हैं. अरहंत भगवान से भी चार गुण अधिक हैं. अरहंत परमेष्ठी में तो चार ही गुण हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के पास आठ गुण हैं. आठ गुण होते हुए भी उनसे हम आकर्षित नहीं रहते. उनको हम याद नहीं करते पहले प्रथम श्रेणी में उनको, क्योंकि देव में बड़े देव कौन हैं, भगवान में बड़े भगवान कौन हैं, सिद्ध भगवान हैं, हालांकि दोनों देवाधिदेव हैं, पर उनमें भी गुणों की अपेक्षा से गरिष्ठपना तो सिद्धों के लिए है। अरहंत को इतनी गरिष्ठपना क्यों नहीं है, तो अभी वे संसार पर्याय में जी रहे हैं। यह संसार पर्याय 14वें गुणस्थान तक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। संसार में रहने वाले गरिष्ठ नहीं माने जाते, संसार पर्याय से मुक्त हुए आत्मा ही गरिष्ठ यानी बड़े माने जाते हैं। उनके पास 8 गुण होते हैं तो इनके पास 4 ही गुण होते हैं। ऐसे अरहंत भगवान, लोक कल्याणकारी भगवान, उनके क्या लक्षण होते हैं, ये जब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से अध्ययन करने के लिए बैठ जाते हैं तो मुख्य रूप से अरहंतों में तीर्थंकर अरिहंत भगवान को ही लक्ष्य बना करके हमारा चिंतन प्रारंभ होता है, हमारा विचार प्रारंभ होता है। क्योंकि ऐसा विचार यदि नहीं करेंगे, परम श्रेष्ठ को विषय बनाकर, परम श्रेष्ठ को लक्ष्य बनाकर हम यदि वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते हैं तो वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। जिनके पास गुण अधिक होते हैं, अधिक गुणों का ज्ञान होने पर कम गुणों का ज्ञान तो अपने आप ही हो जाता है। तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर हैं, उनका समोशरण लगता है। समोशरण में विराजमान ऐसे भगवान के 46 मूल गुण होते, 46 मूल गुण के धारी अरहंत को हम अरहंत कहते हैं, लेकिन यह उत्कृष्ट कथन है। उत्कृष्ट कथन है, और उत्कृष्ट इन गुणों को, 46 पूरे गुणों को जो धारण करते हैं वे ही अरहंत तीर्थंकर की अपेक्षा से ये कथन है। जो जो तीर्थंकर होंगे उनके 46 ही मूल गुण होंगे, और जो जो तीर्थंकर नहीं होते हैं उनको 46 मूल गुण पूरे के पूरे हों, ये कोई नियम नहीं है। ऐसे अरहंत भगवान, अरहंत परमिष्टि के संबंध में यहाँ पर चर्चा चल रही है। तीर्थंकर पद पर आकर के जो मुनि बनकर घाती कर्मों को क्षय कर अरहंत अवस्था पर पहुंचते हैं, उनके पास पूरे गुण 46 के 46 पूरे गुण होते। अब जो सामान्य मुनि हैं, वे भी तो अरहंत बनते हैं, जो कि उसी समोचरण में कई मुनियों को केवल ज्ञान आदि प्राप्त होता है। वे भी धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान से फिर केवल ज्ञान पा करके अरहंत बनते हैं। उनके भी घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु गुणों की अपेक्षा से अरहंत बनने पर उनमें कितने गुण घटित होते हैं ये अगर विचार करेंगे तो 46 पूरे नहीं निकल सकते, ये विचार किया जाएगा इस पाठ में। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न उपस्थित किया है, अरहंत परमिष्टि किसे कहते हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हो गए हैं, उन्हें अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत, अरहंत, अरुहंत आ गया। देखो कल या परसों की चर्चा चली थी, अरिहंत, अरहंत और अरुहंत अर्थात जिन सकल परमात्मा और संयोग केवली अरिहंत परमेष्ठी के पर्यायवाची नाम हैं। जिन जिन किसको कहा जाए, सिद्ध भगवान को जिन कहें? नहीं, वे सिद्ध हैं, जिन नहीं। जिन, हाँ, जिन बनकर के ही सिद्ध बनते हैं ना, इसलिए जिन कहने से यहां सकल परमात्मा, जिन कहने से सकल परमात्मा, सकल परमात्मा कहो या संयोग केवली परमात्मा कहो या अयोग केवली परमात्मा कहो, बात एक ही है। ये 13वें और 14वें गुणस्थान के ये अरहंत भगवान ये जिन ही कहलाते हैं। जिसको जीतना था, जीतना आवश्यक था केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए, उसको तो उन्होंने पूर्णतः जीत लिया है। जीतने का काम पूर्ण हो चुका है, इसलिए वे जिन हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिसको जीतना था उतना तो उन्होंने जीत लिया है, इसलिए वे जिन हैं। पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिसको जीतना है उसको अभी उन्होंने जीता नहीं है, इसलिए वे सिद्ध नहीं हैं। जिन तो हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं कहा जाएगा। सिद्ध का मतलब जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को पूर्णतः सिद्ध कर लिया है उनको सिद्ध भगवान कहते हैं। आत्मा के परिशुद्ध स्वभाव को जिन्होंने पूर्णतः सिद्ध कर लिया है, जो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इन तीनों कर्मों से जो मुक्त हो चुके हैं, जयवंत हो चुके हैं, इन तीनों कर्मों के अभाव के कारण ही जिनकी आत्मा परिशुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसे भगवान को सिद्ध भगवान कहते हैं। ये सिद्ध भगवान संसार में रहते रहते सिद्ध नहीं कहला सकते। जो भी संसार में रहेंगे वो 14 गुणस्थानों के अंदर रहेंगे, और जो भी 14 गुणस्थान के अंदर रहेंगे उनका द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये दोनों होते ही हैं, अरहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद भी द्रव्य कर्म और नौ कर्म अरहंत भगवान के भी हैं। इसलिए अरहंत भगवान जिन तो कहलाते हैं लेकिन सिद्ध परमिष्टि नहीं कहला सकते। ये यहां समझना चाहिए। अरिहंत भगवान जिन हैं, कितने दोषों से मुक्त हैं? 18 दोष। 18 दोषों को दिया है यहां कहीं? अठारह दोषों का नाम, हाँ वो तो है, यहाँ नहीं दिया है, ये पुस्तक में नहीं दिया। अरहंत परमेष्टि 18 दोषों से मुक्त होते हैं, इसलिए वीतरागी कहलाते। ये 18 दोष जब तक मोहनी कर्म का उदय रहता है तब तक पाए जाते हैं। मोहनी कर्म को पूर्णतः नष्ट करने के बाद 18 दोष नहीं रहते। क्योंकि 18 दोषों के एक एक नाम को देखेंगे तो सभी मोहनी कर्म से संबंधित दोष समझ में आते हैं, और जिनको मोहनी कर्म, भाव कर्म भी नहीं और द्रव्य कर्म भी नहीं, ऐसे भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मोहनी कर्म से रहित आत्मा को जिन भगवान कहेंगे ऐसे जिनेन्द्र भगवान को ही हम क्या बोलते, अरिहंत बोलते। 18 दोषों से मुक्त वीतरागी अरहंत भगवान, सकल परमात्मा इनका दूसरा नाम भी है। सकल यानी सकल सब, ऐसा नहीं शरीर, कल यानी शरीर, स यानी सहित, और सकल का दूसरा अर्थ भी है शब्दानाम अनेके अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। कैसे, सकल यानी समस्त, सकल लोक में यानी तीन लोक में, वहां पर लोक का, लोक के लिए जब अर्थ निकालेंगे तो वहां पर शरीर सहित ऐसा अर्थ नहीं निकाला जाएगा। सकल परमात्मा यानी यहां पर शरीर सहित परमात्मा, सकल परमात्मा यानी समस्त परमात्मा, जितने भी परमात्मा हैं वो सभी, ऐसा अर्थ नहीं निकाला जाएगा जैसे लोक के लिए निकाला। सकल लोक, सकल लोक यानी तीनों लोक, सभी लोक, सकल परमात्मा। और सिद्ध भगवान को क्या कहेंगे, निकल परमात्मा। उनको निकल क्यों कहा, शरीर रहित है। नी यानी क्या, नी अंदर नहीं, नी मतलब नहीं, रहित, तो नी का अर्थ रहित कैसे निकालेंगे, सलगथा ये निर्गत कलह यश असौ सकलह, निर्गत कलह शरीर देहो वा यस्य स सकलह, सकलह एव अवस्था यस्य स सकल परमात्मा, सकलह अवस्था यस्य असौ सकल परमात्मा, सकल परमात्मा। निर्गत कलह यश्य स निकल परमात्मा, निर्गत कलह, निर्वत कलह एव, निर्गत कलह एव यश्य अवस्था स निकल परमात्मा, संस्कृत शब्द है और उसकी उत्पत्ति उसके अनुसार ही होगी। सकल परमात्मा यानी शरीर सहित परमात्मा, निकल परमात्मा यानी निर्गत शरीर परमात्मा, निर्गत कल परमात्मा। सयोगी यानी योग सहित, अयोगी यानी योग रहित, ऐसे ही अरहंत परमेष्टि अरिहंत, यह जो पद है वह परम पद है। उस परम पद में रहने के कारण उनको अरहंत परमेष्टि कहते हैं। परम पद में रहने के कारण अरहंत परमेष्टि कहते हैं। अथवा ऐसा भी निकाल सकते हैं, परम इष्ट पद, परम पद जो संसारी प्राणी के लिए, सभी प्राणियों के लिए इष्ट ही होता है, जो परम पद है वह इष्ट होता है, इष्ट होता है। ऐसे इष्ट स्थान पर जो रहते हैं, परम इष्ट स्थान पर जो रहते हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। हाँ, परमः इष्टः पदः यस्य तस्मिन् स्थाने तिष्ठति अथवा तस्मिन् स्थाने प्राप्त्वा तत्र तिष्ठन्ति एते सर्वे परमात्मनः परमेष्टिनः। सर्वे ते परमात्मनः परमेष्टिनः परमेष्टि। इस शब्द का अर्थ दो प्रकार से निकाला जा सकता है, इष्ट पद को लगाकर और तिष्ठ पद को लगाकर, इष्ट तिष्ठ। लेकिन तिष्ठ उचित है, इष्ट क्योंकि ट को ठ नहीं लिखा जाता, ट को लिखा जाता है इष्ट, क्या इष्ट नहीं, हाँ इष्ट लिखा जाता है। तो परमेष्टि लिखते अपन, परमेष्टि नहीं लिखते, हाँ। इसलिए इष्ट की अपेक्षा से निकालना चाहो तो परमेष्टि लिख सकते हैं, और रहते हैं इस अपेक्षा से अगर शब्द बनाना चाहो तो परमेष्टि लिखना पड़ेगा। ये संस्कृत व्याकरण पढ़ने पर आपको समझ में आएगा, नहीं तो ठ भी मालूम नहीं है और ट भी मालूम नहीं है तो कुछ भी मालूम नहीं, निकाल नहीं सकेंगे। अरिहंत, यहाँ पर परिभाषा को समझाते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला, नाश करने वाला, ऐसा अर्थ नहीं निकाला, किंतु भाव तो आ गया है। अरि यानी शत्रु, ऐसा शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला, सैद्धांतिक अर्थ यहाँ पर दे दिया। सैद्धांतिक अर्थ क्या, जिन्होंने चार घाती कर्मों को यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इनको नष्ट कर दिया है, उन और जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित होते हैं उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। यहाँ पर ये देना चाहिए था कि अरि यानी शत्रु, हंत यानी नाश करने वाला, कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने नाश किया है उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं, ये शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो सैद्धांतिक परिभाषा है, पर एक ही बात है, अरिहंत, अरहंत, अरुहंत ये शब्द आते हैं, इन शब्दों की ओर जरा ध्यान देना है। अरिहंत किस अपेक्षा से कहा, अरि यानी शत्रु, चार घाती कर्मों को, कर्म रूपी शत्रु को जिन्होंने नाश किया है वे अरिहंत कहलाए। अरहंत ये भी एक शब्द है, अर अर ये वैसे है, अरहंत अरहंत एक शब्द है, अरहत यहां पर है, देखो अरहत। इसको प्राकृत भाषा में यदि हम लिखेंगे तो अरहंत लिखेंगे, अरहत को। अरहत शब्द का अर्थ ही अरहंत शब्द में है। अरह यानी का, अरह यानी क्या, अरह योग्य, ये बोलने में भी आता है, व्यवहार में भी है शब्द। अरहता, आपके पास इतनी अर्हता है क्या, यानी क्या पूछा, योग्यता, अर्ह यानी योग्यता, योग्यता किसकी योग्यता, गुणों की योग्यता। अरिहंत कहना कहलाने के लिए गुणों की योग्यता है क्या, अरिहंत के जितने गुण होते हैं वे सारी गुणों की योग्यता अर्हता है क्या, हाँ है। किसको है, जो तीर्थंकर पद पा करके समस्त गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, 46 मूल गुणों को प्राप्त करते हैं वे अरहंत कहलाते हैं। जब हम नमो अरहंतानम ऐसा जाप देंगे तो उसमें आज तक अनादिकाल से जितने भी तीर्थंकर पद को पाकर, अरिहंत पद को पाकर मोक्ष गए हैं उन अरहंत पदों को ही नमस्कार होता है। अर्ह यानी योग्यता, योग्य जितने गुण होना चाहिए उन गुणों को प्राप्त करने की योग्यता किसमें होती है? तीर्थंकर पद को प्राप्त करके यहाँ आकर अरिहंत बनने वालों में संपूर्ण 40 मूल गुणों को प्राप्त करने की अर्हता होती है। इसलिए अरहंतानम कहते ही तीर्थंकर जो पद पाकर के अभी तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, उन सबको नमस्कार होता है। अरहंत पद से, अरिहंत पद से, तो अरिहंत पद से सामान्य केवली भी आ गए और तीर्थंकर केवली भी आ गए। नमो अरिहंतानम, तीर्थंकरों ने भी अरि को नाश किया था और अरिहंत पद प्राप्त किया था, और सामान्य केवलियों ने भी, सामान्य मुनियों ने भी इन शत्रुओं को, घाती अरि शत्रु को नाश करके अरहंत पद प्राप्त किया था। तो नमो अरिहंतानम कहने से सामान्य केवलियों को नमस्कार होता है, उनको भी नमस्कार होता है, और तीर्थंकर पद को प्राप्त करके जो अरिहंत बने हैं उनको भी नमस्कार हो जाता है। देखो जरा सा फर्क है, थोड़ा सा। अरहंतानम कहेंगे तो केवल तीर्थंकर ही आएंगे, जो अरह 40 के लिए अरह योग्य होना चाहिए, 40 सबको प्राप्त करने के लिए योग्य होना चाहिए, तो उसके लिए तो तीर्थंकर पद ही चाहिए, तो 40 मूल गुण के धारी वो अपने आप बनेंगे। किंतु अरि को नाश करने की शक्ति तो प्रायः सबको, जिसको भी केवल ज्ञान हो गया उन सभी मुनियों को अरि का नाश होता है, इसलिए वो अरिहंतानम। तो कौन सा जाप करे? हाँ, तो पाठ में क्या है देख लो, पाठ में यानी नमोकार मंत्र के पाठ में अरि का ही उपयोग किया है ना। क्यों किया? इसमें तीर्थंकर भी आ गए और सामान्य केवली भी आ गए, यानी परिपूर्णता होने के कारण, अर्थ में परिपूर्णता होने के कारण नमो अरिहंतानम इस पद का उपयोग किया है। सकल केवली, समस्त केवली उसमें समाविष्ट होते हैं, इसलिए अरिहंत पद को उपयोग में नमोकार मंत्र में लाया गया। अब देखो तीसरा शब्द भी है, बोलते समय अपन अरोहंतानम ऐसा कहते हैं तो भी गलत नहीं है। ये तीनों शब्द सही हैं, अरिहंतानम कहे या अरहंतानम कहे या तो अरोहंतानम कहे, और कोई शब्द नहीं है, तीन ही शब्द हैं। अरहत यह शब्द तो संस्कृत का है और नमोकार मंत्र किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा के ये तीन शब्द हैं, अरिहंत, अरहंत और अरोहंत, ये तीनों शब्द प्राकृत के, और अरहत यह प्राकृत का। जिन, देखो जिन लिखेंगे तो संस्कृत शब्द कहलाएगा, और जीर्ण लिखेंगे तो प्राकृत कहलाएगा, टट ढड़ न, क्योंकि प्राकृत भाषा में न का उपयोग किया ही नहीं, न व्यंजन स्वीकृत ही नहीं है प्राकृत भाषा में, प्राकृत व्याकरण में न त द द न उसका उपयोग होता ही नहीं, वो है ही नहीं। जैन धर्म के जितने शास्त्र हैं और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, कहीं भी ढूंढ करके देख लो त त द द न, न का प्रयोग ही नहीं मिलता, टट ढड़ न मिलेगा, न न न बाणाच न मिलेगा, लेकिन धनच न नहीं मिलेगा, धन नड़ाच न नहीं मिलेगा, नड़ाच न। जिन यह संस्कृत शब्द है, सकल ये भी संस्कृत है, परमात्मा संस्कृत है, सयोग केवली संस्कृत है, अरिहंत ये प्राकृत है, परमेष्ठी संस्कृत है, प्राकृत में परमेठी होगा, पंच परमेठी। एक छोटा बच्चा यदि इसका उच्चारण करेगा परमेष्ठी शब्द का तो संस्कृत उच्चारण उसको नहीं बनेगा, वो क्या बोलेगा, परमेठी बोलेगा, और इसलिए इसको प्राकृत कहा। प्राकृत यानी नैसर्गिक, नैसर्गिक जन्मतः हम जो बोलते हैं उसको प्राकृत कहते हैं। निसर्ग से जो उच्चारण होता है जन्म के पश्चात वो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा से ही संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है, जन्मदाता प्राकृत प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा, और ये नैसर्गिक भाषा है, सभी भाषाओं का मूल है ये ओरिजिनल भाषा। चतुर्थ काल में भी यही भाषा थी, आदिनाथ भगवान के टाइम में भी यही भाषा बोली जाती थी, स्वर में। स्वर्ग में कौन सी भाषा होती है इसकी चर्चा कहीं आई नहीं, परंतु वैदिक ग्रंथों के अनुसार इसको सुर भारती भाषा कहा है, सुरवाणी, सुर भारती यानी सुरवाणी यानी भाषा, सुर भारती कहा है यानी देवों की भाषा संस्कृत होती है, और देव लोग फिर प्राकृत बोल नहीं सकते क्या, प्राकृत बोल ही नहीं सकेंगे वो, क्यों पूछो, प्राकृत क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर जन्म के बाद बाल्यावस्था नहीं रहती, बाल्यावस्था नहीं रहती, तो बाल्यावस्था में इसको बोला जाता है, संस्कृत में कौन बोलेगा इसको, जन्म के पश्चात तुरंत अवधि ज्ञान होता है और युवा अवस्था में पैदा होते हैं, एकदम वे उच्चारण में उसने सब कम्प्लीटली परिपूर्णता उनमें होती है। मनुष्य अपूर्ण होता है, उसकी जीभ पलटती नहीं छोटी अवस्था में, फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है जीभ पलटती है, भाषा सुसंस्कृत हो जाती है, ये फर्क है। नारकी नरक में भी ऐसा ही है, बाल्यावस्था नहीं है, सीधा ही उपवास से या पर जीव जन्म लेता है, सीधा युवावस्था में ही रहता है। नारकियों की भी भाषा कौन सी होती है ये कोई भी आगम में चर्चा नहीं है, परंतु ये चर्चा है कि वचन योग वाले तो होते हैं, देव भी वचन योग वाले होते हैं और नारकी भी वचन योग वाले होते हैं। वचन योग वाले जीव त्रिरंच गति में द्विइंद्री से लेकर संगी असंगी पंचेंद्री तक और मनुष्य ये सारे वचन योग वाले होते हैं। शब्द शब्द चाहिए ऐसा कुछ नहीं, ध्वनि मात्र भी वचन है। जैसे द्विइंद्री आदि जीव कुछ वे अपने मुख से कुछ स्वर निकाल लें तो ये भी वचन ही माना गया है। बोलने को ही भाषात्मक शब्दों को उपयोग करके बोलने को ही वचन योग नहीं कहा, ध्वनि मात्र को भी वचन योग कहा। अरिहंत भगवान ध्वनि मात्र ही बोलते हैं ना, ओम ये क्या हुआ, ध्वनि मात्र है, ये निरक्षरी है, दिव्य ध्वनि निरक्षरी ध्वनि कहलाती है। इस निरक्षरी ध्वनि में कितना अनंत ज्ञान का सागर भरा हुआ है, वो सभी क्या है उसके भीतर, अरहंत भगवान जिस केवल ज्ञान के उपयोग के द्वारा वे दिव्य ध्वनि खिरा देते हैं, उसमें अर्थ भी होता है, वो अक्षरात्मक नहीं है, ध्वनि मात्र है, लेकिन उस ध्वनि में जो उपदेश का अर्थ भरा हुआ है उसी से नमोकार मंत्र की उत्पत्ति हो गई। और नमोकार मंत्र में सच्चे देव और सच्चे गुरु का स्वरूप समझा दिया गया। सच्चे देव और सच्चे गुरु दोनों का स्वरूप समझाया। इस स्वरूप को समझाने के बाद इनके गुणों का व्याख्यान करने के लिए द्वादशांग शास्त्र की रचना हो गई। पंच परमेष्टियों के अपने अपने जो मूल गुण हैं, उनका व्याख्यान करते करते चारों अनुयोगों की रचना हो जाती है। क्योंकि प्रथमानुयोग जब हम लिखेंगे तो किसका लिखेंगे? प्रथमानुयोग महापुरुषों का, जिन्होंने आज तक महाव्रत धारण किया, अरहंत पद धारण किया, सिद्ध पद धारण किया, ऐसे ही महापुरुषों का पुरुषों की कथा प्रथमानुयोग में मिलती है। 63 चलका पुरुष, उनकी कथा लिखने का मतलब यह है कि नमोकार मंत्र का विस्तार करना। देखो नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती बलभद्र ये सभी महापुरुष कहलाते हैं, और नारायण प्रति नारायण वगैरह की ये भले ही दीक्षा नहीं लेते हो लेकिन भविष्य में ये भी महापुरुष बन करके मोक्ष जाने वाले हैं, यानी भव्य हैं, और अल्प भवों में ही ये मोक्षगामी जीव होते हैं। इसलिए ये प्रथमानुयोग के अंदर आ गए, इनकी भी कथा कहनी पड़ी क्योंकि ये भावी नमोकार मंत्र के सदस्य हैं। भावी सदस्य नैगम ने, भावी नैगम नैगी की अपेक्षा से वे भी परमिष्टि हैं, लेकिन नमोकार मंत्र में अभव्य जीव कैसा आया? और द्वादशांग जो निकला है नमोकार मंत्र से ही निकला है, ओंकार से ही निकला है, ओंकार से नमोकार मंत्र बना, चारों अनुयोग बने, और उसमें जो भव्य अभव्य जो मोक्ष जाने वाले हैं, जो अरहंत पद आदि पाने की योग्यता रखते हैं वो तो भव्य ही हैं, तो अभव्य कैसे निकला इसमें से? वो भी क्या महान है क्या? उसका कथन क्यों किया भगवान ने? शक्ति है, व्यक्त नहीं होती, लेकिन व्यक्त नहीं होती है तो फिर भावी सदस्य तो है ही नहीं। नमोकार मंत्र के भावी सदस्य बन नहीं सकते वो कभी। फिर नमोकार मंत्र में अभव जीव है क्या? नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप पूरा विषय भूल रहे हैं, फिर पीछे का एक महीने का पूरा विषय भूल गए आप। कोई भव्य अभव ही नहीं बनता, अभव विभव ही नहीं बनता, ये तो सिद्धांत है, नियम है। यहाँ देखो अरिहंत भगवान अपने केवल ज्ञान में समस्त जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष आदि सात तत्व छह द्रव्य पंच अस्थि काय इन सब का उपदेश दिया क्या? नहीं दिया। दिया महापुरुषों के कथन के साथ साथ, सात तत्व नौ पदार्थ पंच अस्थि काय इन सब का भी व्याख्यान उन्होंने किया। क्यों किया? इसलिए किया जो भव्य जीव हैं वे अपने आत्म स्वभाव को समझे, समझ करके अपने आत्म स्वभाव में लौटे, लौट करके अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो प्रतिकूल परतंत्र करने वाले बाधक तत्व हैं उनको हटाएं और अपने आत्म स्वभाव में स्थापित हों, इस उद्देश्य से भगवान को ये कथन करना पड़ा। उन्होंने कथन किया भव्या भव्य का, इसका अर्थ ये नहीं कि अभव्य जीव भी मोक्ष जा सकता इसलिए कथन किया हो। तो उपदेश भगवान ने अभव्य जीवों को नहीं दिया। जब उनका उपदेश प्रारंभ हुआ तब भगवान ने यही कहा संबोधन में, हे भव्य जीवों, दोनों को नहीं मिला, हे भव्य जीवों, हे अभव्य जीवों, ऐसा नहीं कहा है। अभव्य का नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अभव्यों को उपदेश एक दिन भी नहीं दिया। हाँ, उनके पास योग्यता ही नहीं है तो उपदेश क्या? उनके पास योग्यता ही नहीं है तो क्या उपदेश? उनको उपदेश होता ही नहीं। हाँ, मैं जो उपदेश दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को उद्देश्य करके उपदेश दे रहा हूँ या माइक को उद्देश्य बना करके उपदेश दे रहा हूँ? हे माइक सुन लो, तुम भी सुन लो, हे लोगों तुम भी सुन लो, ऐसा कह रहे हैं? इस माइक को उपदेश देना और अभव्य जीव को उपदेश देना एक ही बात है। ये भी सम्यक दर्शन आदि ग्रहण नहीं कर सकता, वो भी सम्यक दर्शन आदि ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वो त्रैकालिक अभव्य है। पहले भी अभव्य था, आज भी अभव्य है और अनंत काल तक अभव्य ही रहेगा। स्वभाव में चेंज नहीं हो सकता, स्वभाव को परिवर्तन किया नहीं जा सकता। भव्यत्व भी एक यह स्वभाव है और अभव्यत्व भी एक स्वभाव है। इस स्वभाव को कोई किसी भी शक्ति से, चाहे स्वयं की शक्ति लगा लो या किसी दूसरे की शक्ति लगा करके भविष्य अभव्य अभविष्य भव्य बनाने का प्रयत्न करो, ये संभव ही नहीं है। प्रकृति है वो, तो द्रव्य श्रुत है, भाव श्रुत को नहीं जगा सकता वो। भाव श्रुत अलग बात है, द्रव्य श्रुत अलग बात है। द्रव्य श्रुत यानी भगवान ने जो कहा उसको हमने ग्रहण करके इकट्ठा करके धारणा मति ज्ञान में हमने मेमोरी कार्ड में स्टॉक किया। मेमोरी कार्ड है वो धारणा मति ज्ञान, तो ये अभव्य भी कर सकता है, भव्य भी कर सकता है, पर मेमोरी कार्ड तो कार्ड ही है ना। मेमोरी कार्ड में रखा हुआ विषय वो भाव श्रुत नहीं कहलाता, वो द्रव्य श्रुत है, शाब्दिक है, शब्द है, परंतु इन शब्दों का विचार करने की जो शक्ति है वो श्रुत ज्ञान के पास है। उस श्रुत ज्ञान के पास अनादिकाल से मिथ्या भाव श्रुत ज्ञान है। अब वह सम्यक भाव श्रुत ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी भव्यत्वपना चाहिए। भव्य जीव होगा तो उस द्रव्य श्रुत से चिंतन करके भाव श्रुत को उत्पन्न करा सकता है अपने में। देखो, श्रुत को दो प्रकार से समझना चाहिए, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत की उत्पत्ति के लिए काम में आता है, इसलिए हमारे लिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी होना ही चाहिए। ये लौकिक ज्ञान किसी काम का नहीं, इससे परमार्थ की सिद्धि नहीं होती, परमार्थ का बोध नहीं मिलता, इसके द्वारा सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति के लिए छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पंच अस्तिकाय आदि का ज्ञान चाहिए और उसमें जीव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान चाहिए। मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव तत्व हूँ, मेरे पास शुद्ध बनने की शक्ति है, इस प्रकार का ज्ञान जगाने की शक्ति चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मोक्ष जा सकता हूँ, इस प्रकार श्रद्धा रुचि जगाने का प्रयत्न ये द्रव्य श्रुत के बिना नहीं होता। द्रव्य श्रुत के आलम्बन से ही हम भाव श्रुत को उत्पन्न करते हैं। भाव श्रुत का मतलब क्या? हम अपने आप को जान गए, अपने आप की श्रद्धा को कर गए, आत्म तत्व की रुचि को प्राप्त कर लिया, श्रद्धान कर लिया, ये हो गया हमारा सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन हो गया, ये सम्यक दर्शन है ये। लेकिन ये सम्यक दर्शन होने के लिए, ये सम्यक भाव सम्यक्त को जगाने के लिए आवश्यक हो गया कि नहीं? द्रव्य श्रुत, तो द्रव्य श्रुत शाब्दिक है, सूत्रात्मक है, और भाव श्रुत उसमें क्या कहा है उसको समझकर, चिंतन कर, ध्येय को त्यागा, उपादेय पर आ गए और उसका आचरण करना प्रारंभ किया। यहां पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई। ये भावश्रुत कहलाता है। भावश्रुत कहां रहता है? सम्यक दृष्टि जीव के पास ही रहता है। और सम्यक तो जिसके पास नहीं है उनके पास द्रव्य श्रुत हो सकता है, किंतु भावश्रुत नियम से नहीं रहता, रहता ही नहीं, ऐसा नियम है। जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा तब तक भावश्रुत ज्ञानी नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के पास जो इतना अपार ज्ञान रहता है 11 अंग और 10 पोरु का, उससे क्या काम करता है? वो क्या काम करता होगा? वो विचार में नहीं लाता, विचार में ला करके उस पर श्रद्धान करने का प्रयत्न नहीं करता। आत्म तत्व की वो रुचि करके उस पर श्रद्धान करने का काम नहीं करता, फिर क्या करता है? तो उसको भी प्रयोग में लाकर ख्याति, लाभ, पूजा, भौतिक सुखों की, बहिर्मुख सुख की प्राप्ति के लिए, बहिर्सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। ये है आत्मकल्याण से उसको मतलब ही नहीं रहता। इस द्रव्य श्रुत के द्वारा ख्याति, लाभ, पूजा आदि में डूबा रहता है। और 11 अंग 10 पोरों का ज्ञान का मतलब क्या है? आज किसी को नहीं है इतना, नहीं होते हुए भी आज सम्यक दृष्टि बन रहे हैं, और उनको उतना होकर के भी सम्यक दृष्टि नहीं बनते। अभव्य भी उतना प्राप्त कर सकता है, भव्य भी मिथ्या दृष्टि रहेगा तो उतना प्राप्त कर सकता है। 11 अंग 10 पुरु का मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व अवस्था में यदि द्रव्य श्रुत को प्राप्त करना चाहे तो 11 अंग 10 पुरु तक प्राप्त कर सकती, परंतु आगे का प्राप्त करने के लिए जीव को नियम से सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए, और उसमें भी अविरत सम्यक दृष्टि कितना प्राप्त कर सकता है ये अलग बात है, देशव्रति कितना प्राप्त कर सकता है ये अलग बात है, संयमी, सकल संयमी, महाव्रति, मुनि कितना प्राप्त कर सकता है ये अलग बात है। तो ये बातें अलग अलग है। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत को दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ याद आया था? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, द्रव्य श्रुत भाव श्रुत के लिए, हाँ उदाहरण एक देना था वो नहीं दे पाई थी। देखो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, द्रव्य श्रुत का उदाहरण जैसे अभव्य मोक्ष तो जाएगा नहीं, पर द्रव्य श्रुत कितना हो सकता है? 11 अंग 10 पूर्व, तो उसके लिए ये उदाहरण है। नदी में पुल होता, पानी में खड़ा, स्वयं पानी को पार कर उस पार नहीं जाता, परंतु अपने पीठ पर से जाने वालों के लिए सतत सहयोग करता रहता है, उसका उतना ही काम है, स्वयं पार होने का काम उसका है नहीं और योग्यता भी नहीं है उसके पास, पुल कैसे जाएगा उस पार? दूसरे को तो पार करा सकता है लेकिन खुद पानी में ही रहता है, किंतु नाव नैया वह स्वयं भी पार होने की योग्यता रखता है और दूसरे को भी पार करता है, तो अपने पीठ पर बिठाकर स्वयं भी चलता रहता है और खुद भी पार होता रहता है। ये भव्य जीव का उदाहरण है। भव्य जीव स्वयं भी पार होता है और दूसरे को भी पार कराता है, और अभव्य जीव पुल की तरह दूसरे को तो पार कराता है लेकिन स्वयं पार नहीं होता। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते 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 संसार में ही रहता है। दूसरी बात, 84 लाख योनियों में देखो देव योनि भी है, तो स्वर्ग में जाएगा, देव गति में जाएगा तो कहां तक जा सकता है? देखो 9वें ग्रहवेग तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो 9 अनुदिश्य वाले योनि में और 5 अनुत्तर विमान की योनियों में उसका जन्म हुआ ही नहीं है। और कहां कहां नहीं गया है? वो तो बन ही नहीं सकेगा, वो तो बन ही नहीं सकेगा। तीर्थंकरों के माता पिता भी नहीं बन सकता और तीर्थंकर भी नहीं बन सकता, क्योंकि माता पिता क्यों नहीं बनता? हाँ, माता पिता भव्य ही रहते हैं और तीर्थंकरों को तो जन्म देते समय सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। माता जन्म के समय, स्वयं जन्म के समय सम्यक दर्शन से रहित थी क्या? सहित थी क्यों? स्त्री पर्याय, सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में नहीं जन्मता। इस नियम के अनुसार उनका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही हुआ होता है, किंतु 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है माता को, और पिता जन्म के साथ सम्यक दृष्टि रहते हैं या मिथ्यात्व। मिथ्या दृष्टि भी रह सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी रह सकते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि है, पुरुष पर्याय में आए हैं, तो जन्म के 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि है ही, किंतु ये नियम है जब तक माता और पिता को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक तीर्थंकर का जीव उस परिवार में जन्म लेता नहीं है। देखो सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। महापुरुष आपके घर में पैदा नहीं हो सकते जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बनते। कितनी कीमत है उसकी? अमूल्य अमूल्य वैडूर रत्न। साहूकार के घर में ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं, गरीबों के यहाँ जन्म नहीं लेते। और साहूकार कैसे? आत्मा से साहूकार, शरीर से गरीब हो या साहूकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आत्मा से जो साहूकार रहते हैं वो शरीर से, धन से, संपत्ति से गरीब हो ही नहीं सकते। ऐसा कभी देखा गया है क्या कि तीर्थंकर के माता पिता जहां जन्म लिए वह कुल गरीब कुल था, जबकि मिथ्यात्व के साथ आए हैं माता और पिता भी मिथ्यात्व के साथ आए हों, लेकिन उनका कुल बाहर बहिरंग वैभव की अपेक्षा से कम थे। कम थे क्या? क्यों नहीं? पूर्व का पुण्य होता ही है। तीर्थंकर को जन्म देने की योग्यता को रखकर यहाँ आ रहे हैं और फिर हाँ धनहीन कुल में कैसे जन्म ले सकते हैं? ऐसा किसी तीर्थंकर का नहीं हुआ। सम्यक दर्शन देखो वहां रहते हुए रहता है, कहां देवगति में माता के पास, देवगति से आ रहा हो वो जीव तो हो सकता है वहां सम्यक दृष्टि हो, और होना ही चाहिए पूर्व भाव में। हाँ तीर्थंकर को जिसे जन्म देना है और वही अभी जीव देवगति में है, वो जीव यहाँ आने वाला है तो वो नियम से सम्यक तो उसके साथ रहना ही चाहिए, किंतु उस सम्यक दर्शन को नाश करने के फलस्वरूप स्त्री पर्याय में आकर के जन्म लेना पड़ रहा है। लेता ही है, ऐसा नियम नहीं, पर लेना पड़ रहा है स्त्री पर्याय का बंद होने से। जन्म लेना पड़ रहा है किंतु वहां सम्यक दर्शन के साथ रहने से जो पुण्य का बंद हुआ था उस पुण्य के फल को यहां पा रहे हैं। वो पूर्व का पुण्य यहां दरिद्र बनने नहीं देगा, संपन्न कुल में ही पैदा होंगे मिथ्यात्व के साथ आने पर भी, संपन्न परिवार में ही जन्म लेते हैं। हाँ क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पूर्व भव में सम्यक्तु की आराधना, सम्यक्तु धर्म की आराधना किए हुए होते हैं, और आते समय भले ही सम्यक दर्शन छूट गया हो लेकिन पूर्व में किया हुआ पुण्य कहीं जाता नहीं है, उस पुण्य के साथ जन्म लेते हैं, इसलिए धनवान संपत्तिवान बनते हैं। ये धनवान बनना संपत्तिवान बनना तो जिसने मतलब पूर्व भव में वो नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, वो भी धनवान संपत्तिवान बन सकता है। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र किस कुल में पैदा हुए? धन संपत्तिवान के कुल में पैदा हो गए। वो कहाँ से आए थे? निगोद से आए थे, द्विंद्री बने, द्विंद्री से सीधा मनुष्य भाव में आए, तो भी धन संपत्ति के कुल में आए कि नहीं आए? आए, यानी मिथ्या दृष्टि भी धन संपत्ति आदि को पा लेता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु सम्यक दृष्टि हो तो पुण्यानुबंधी पुण्य को कमा करके फिर आता है। आते समय यदि सम्यक दर्शन छूट जाता है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद तो वो मिलेगा ही। कर्म सिद्धांत बड़ा गंभीर है, बड़ा गंभीर विषय है, उसके गहराई में जा करके देखेंगे तो बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए, रहस्य की बातें छिपी हुई है। बाईसवां, अरिहंत परमिष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? अरिहंत परमिष्टि के 46 मूल गुण होते हैं, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार एवं 4 अनंत चतुष्टय। कितने हो गई ये? 46 हो गई, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार एवं 4 अनंत चतुष्टय। 21 अरहंत के, तीर्थंकर अरहंत के समझना चाहिए। अरिहंत कहने से यद्यपि सभी आ गए लेकिन सभी के नहीं होते, उसमें उत्कृष्टता का ही ग्रहण करना चाहिए। चौतीसों अतिशय सहित प्रातिहार्य पुनि आठ अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 46 पाठ। ये पद्य में अरहंत के 46 मूल गुणों का उल्लेख है। 23वां सूत्र है, अतिशय किसे कहते हैं और अरिहंत भगवान के 34 अतिशय कौन कौन से हैं। अतिशय पहले नंबर में अतिशय है ना, 34 अतिशय। अतिशय किसे कहते हैं और अरहंत भगवान के 34 अतिशय कौन कौन से हैं, इसका उत्तर देते हैं। सर्वसाधारण पुरुषों में न पाए जाने वाले अद्भुत तथा आकर्षक विशेष कार्यों को अतिशय कहते हैं। अतिशय की ये परिभाषा, अतिशय की ये परिभाषा है। क्षेत्रों का नाम भी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र ऐसा रखते हैं ना। तो अतिशय का क्या मतलब, अतिशय हाँ जो सर्वसामान्य सब जगह नहीं पाया जाता और यहाँ पाया जाता है, ऐसा ही होता है ना क्षेत्रों पर भी। इस क्षेत्र की क्या विशेषता, यहाँ जो चमत्कार है, यहाँ जो अतिशय है वो कहीं भी नहीं है, सब जगह नहीं होता, यहाँ का अलग है और वहां का अलग है, इसलिए उनको अतिशय क्षेत्र नाम पड़ता है। तो अतिशय क्षेत्र पर जाकर के लोग चमत्कार 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 को नमस्कार उसके लिए दौड़ते हैं, चमत्कार को नमस्कार नमस्कार करने के लिए दौड़ते हैं। और वहां जाकर के क्या मांगते हैं, तो ये बड़ी वस्तु नहीं मानते, जो अनादिकाल से मिल चुकी है, मिलती रही है, मिलेगी, ऐसी वस्तु को ही दीनहीन बनकर दीनहीन बनकर इंद्रिय विषयों को ही मांगते हैं अज्ञानी जीव। कहां जाकर, अच्छे क्षेत्रों पर जाकर। कभी कहां गए, अच्छे क्षेत्र महावीर जी गए, अच्छे क्षेत्र पद्मपुरी गए, अच्छे क्षेत्र बहुत सारे हैं वहां जाकर के, जंतूर गए। अच्छे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कौन जाते हैं, हाँ पुण्यवान जीव जाते हैं लेकिन पापवान होकर के लौटते हैं जाने के लिए तो पुण्य चाहिए पड़ता। अच्छे क्षेत्र पर जा रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, तभी तो जाने के भाव हो गए, पुरुषार्थ हमारा सफल हो गया। जाने के लिए तो पुण्य के बिना तो गए ही नहीं, वो पुण्यवान जीव ही जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र, पंच परमिष्टि की वंदना, पंच परमिष्टि का ध्यान, नमस्कार इत्यादि करने के लिए पुण्य चाहिए पड़ता, पुण्य के बिना ये नहीं होता है, क्षोभम चाहिए। किंतु वहां जाने के बाद पाप करके लौट सकते हैं कि नहीं अपन, हाँ ज्ञान हो तो पुण्य कमा करके लौटेंगे, ज्ञान हो तो आत्म कल्याण करके लौटेंगे, ज्ञान हो तो सम्यक्वादी धर्म को प्राप्त करके लौटेंगे। लेकिन हम वहां जाकर के यदि भोगोपभोग वस्तु को ही मानते हैं तो यही सुनकर के बहुत से लोग ऐसे जाते हैं कि वहां जाने से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा ख्याति है, हाँ पुत्र की उत्पत्ति होती है। किसने कहा, ये सभी होकर के आए यही बता रहे हैं, तो लोगों की बात सुन सुन करके दौड़ते हैं लोग, लोगों की बात सुनना और दौड़ना, चमत्कार को मानते हैं। अज्ञानी जीव चमत्कार को मानता है और ज्ञानी जीव चमत्कार को नहीं मानता। वहां अच्छे क्षेत्र में जाकर असली चमत्कार को वो मानता है, ये नकली चमत्कार नहीं चाहिए कि पुत्र हो गया, धन मिल गया, हम बहुत सुखी हो गए, करोड़पति हो गए, इससे प्रभावित ज्ञानी जीव नहीं होता। ज्ञानी जीव कहता है अरे ये तो क्षणिक हैं, ये तो सहजता से प्राप्त होने वाले, ये तो घास हैं, हम क्या पशु हैं उसको मांगे। पशु घास मांगता है मनुष्य धान्य मांगता है, मनुष्य मोक्ष मांगता है, मनुष्य धर्म मांगता है, मनुष्य सम्यक्तु मांगता है, मनुष्य ज्ञान मांगता है, मनुष्य कर्म निर्जरा मांगता है, मनुष्य कर्म का संवर मांगता है। मनुष्य जो ये मांगता है वो ज्ञानी, और ये मांगने पर वहां पर कार्य सिद्धि होती है तो चमत्कार, ये अलौकिक चमत्कार। अतिशय क्षेत्र गए और वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और वो लौट करके नहीं आया, दीक्षा लेकर के वहीं रह गया, ये असली चमत्कार अतिशय क्षेत्र दर्शन का है, अति विशेष। और वहां गए लौट के आ गए, ये दुर्भाग्य, ये चमत्कार नहीं है। और यहां पर आने के बाद भले पुत्र और धन की उत्पत्ति हुई हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई हो, लेकिन ये दुर्भाग्यवान, क्योंकि जो पाप कर्म के बंध में कारण है ऐसे वस्तु मांग करके हम आ गए, पापाश्रव जिनसे होता है वो वस्तु मांग करके आ गए, तो ये पापाश्रव हमारे लिए दुख ही देने वाला है। इसलिए दुख के देने वाली वस्तु को हम घर लेकर के आए अच्छे क्षेत्र पर जाकर के, तो ये खरा अतिशय है क्या? नकली अतिशय है ये, तो नकली अतिशय को हम क्यों माने? वहां जाकर के असली नोट ले आओ, नकली नोट ले आ रहे। अतिशय क्षेत्र आत्मा के अतिशय को बढ़ाने के लिए होते, और वहां जाने पर हमको शांति मिली, हमको मन लगा, सामायिक करने के भाव आ गए, भगवान को देखकर भगवान के ध्यान में हमारा मन लग गया, कर्म क्षय करने के परिणाम हो गए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के भाव जग गए। संयम धारण करने के भाव जग गए, तो ये सबसे बड़ा अतिशय, अतिशय ये असली अतिशय। आप लोगों ने कभी ऐसे अतिशय को अनुभव किया है अतिशय क्षेत्रों में जाकर के? किया है? यदि किया होता तो लौट के नहीं आते, वहीं रहते। आप वहां जाकर के भी लौट करके आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप नकली नोट को लला लेकर के आए हैं, असली नोट लेकर के नहीं आए, वहीं छोड़ के आए। वहां दोनों प्रकार के नोट रखे थे, असली भी चाहो तो असली ले लो, नकली भी चाहो तो नकली ले लो। लेकिन भीड़ किन की रहती है वहां? नकली नोट ले आने वालों की भीड़ रहती है। नामाभिधान तो वहां पर देखो, आपने लड़के का नाम, तीर्थंकरों का नाम रखा, जैसे पारसनाथ रखा, तो पारसनाथ के कुछ तो गुण दिखे होंगे ना, तभी रखा ना। कुछ तो थोड़ा सा गुंजाइश, आंशिक गुण तो देखा होगा, अरे तो लड़का पैदा हो गया हमारे घर में और ऐसा लगता है कि जैसे पारसनाथ, जैसे दयालु, ये कभी हमने नहीं देखा कि जीव को मारता है, जीव को तो बचाता है ये, जैसे पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया था। तो पारसनाथ के ये दया के भाव को देख करके आपने अपने लड़के का नाम पारस रखा। अब ये पूरे गुणों को हासिल करे ना करे, लेकिन नाम तो रख दिया आपने। तो ऐसे अच्छे क्षेत्रों में कुछ अतिशय दिखाई देते, कोई आया और वहां पर वो प्रार्थना करके चला गया कि भगवान हमको धन संपत्ति हो, वो भरपूर हो, और जाकर के धन संपत्ति उसकी भरपूर हो गई, तो ये अतिशय है, भले ही नकली हो लेकिन अतिशय। तो ऐसे अतिशय जहां होते हैं उसका अतिशय क्षेत्र नाम दिया जाता है। लेकिन इस अतिशय, यह अतिशय क्या भगवान का है? क्या भगवान ने किया आपको? धन संपत्तिवान हो गए, लक्ष्मीमान बन गए वहां जाकर के घर में, ये पुण्य से बने या भगवान ने कराया आपको धन संपत्ति आदि? लेकिन स्तुति स्तोत्र में तो ऐसे ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पार्श्वनाथ की, वो बोलो तो सही, वो जय माला है क्या नहीं? दीन दरिद्रन को साहूकार बनाया और आपुत्री को पुत्र बनाया और ये पढ़ते हैं कि नहीं? तो ये जो हम पढ़ते हैं ये भगवान करते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये तो अपने अपने पुण्य के कारण से होता है और वह पुण्य साति से पुण्य अगर बंधता है तो अपने आप होता है, और निरति से पुण्य को बांध करके लौटते हैं तो भगवान की भक्ति से ही वो पुण्य बंधता है, वो भी पुण्य, परंतु भाव मन के भाव अशुद्ध थे, हमारे भाव अशुद्ध हैं क्योंकि हम इंद्रिय विषय मांग रहे हैं। क्षेत्र पर जाने से थोड़ा बहुत पुण्य तो इकट्ठा हो गया क्योंकि मंद कषाई थी, मंद कषाई के काल में थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, लेकिन भाव अशुद्धि के कारण उसमें क्वालिटी नहीं आती। क्वालिटी में हम घाटा कर लेते जानबूझकर, मालूम होते हुए भी ऐसा होता है, मालूम नहीं होते हुए होता है तो बात अलग है, लेकिन संकट आने पर सत्य को भी भूल कर असत्य के मार्ग पर ही चलते अपन, जानबूझकर ही होता है सब। संकट के काल में भी ज्ञान अज्ञान में नहीं ढलना चाहिए, लेकिन ढलता है। कुछ संकट आया तो किसी ने कहा, अरे तुम महावीर जी क्यों नहीं जाते हो, वहां जाकर के एक बार तो जाकर के देख लो, तुम्हारा मालो माल हो जाएगा, सभी संकट दूर हो जाएंगे, तो जाने को बिल्कुल मन आकर्षित होता है। और वो आकर्षित होता है तो किस उद्देश्य से जाता है, वो असली उद्देश्य को तो बिल्कुल भूल जाता है, ज्ञान हो तो भी भूल जाएगा यहाँ, और ज्ञान होने पर भी अगर नहीं भूलता है तो असली सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वभाव को न छोड़ता हुआ अच्छे क्षेत्र पर जाता है, वो सोचता है कि मैं अच्छे क्षेत्र का दर्शन करके आ जाऊंगा तो मेरे पाप कर्म के उदय में जो संकट आ रहे हैं ये निश्चित टलेंगे, मैं कर्म निर्जरा के लिए जा रहा हूं, पाप कर्म की निर्जरा हो, दुख कहो कमक हो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, ये कहता है वहां जाकर के। और ये क्या कहता है, लक्ष्मी हो धन हो पुत्र हो गाड़ी हो बंगला हो, ये सब मांग करके आता है। एक जाकर सब मिटाने वाले चीजों को मांग करके लाता है और एक जाकर के बनाने वाले वस्तु को घर ले आता है, वो दोनों तरह से बन जाता है, ये एक तरह से भी ठीक से बन नहीं पाता, मिट जाता है ये। तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, कैसा ज्ञान, जो परमार्थ में रहता है सदा, परमार्थ को छोड़ करके हिलता नहीं, वो ऐसा ज्ञान चाहिए, परमार्थ का ज्ञान चाहिए। ये परमार्थ का ज्ञान हमारे आत्म कल्याण का कारण बनता है। अतिशय की परिभाषा यहाँ बताया गया, सर्वसाधारण पुरुषों में न पाए जाने वाले अद्भुत तथा आकर्षक विशेष कार्यों को अतिशय कहते हैं। अरहंत भगवान के 34 अतिशय निम्न प्रकार हैं। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत अतिशय, 34 ज्ञान जन्म के, 10 अतिशय कौन कौन से, अतिशय सुंदर शरीर, शरीर ही इतना सुंदर तो आत्मा कितना सुंदर, अंतरंग से भी विचार करना है, बहिरंग से भी। देखो तीर्थंकरों का शरीर, जितने तीर्थंकर होते हैं उन तीर्थंकरों का शरीर कभी भी अंक डोंक नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता, एकदम मनोज्ञ शरीर। जैसे वर्तमान में आचार्य श्री को देखा है ना फोटो में, उनको किधर से भी फोटो ले लो, उनका फोटो ऐसा आता है जैसे बाहुबली भगवान। ये अंग, ये प्रत्यंग, ये देह, मनोज्ञ मनोहर देह किस कर्म का फल है ये? हाँ, ये शुभ नाम कर्म का फल है। ये शुभ नाम कर्म कब किया होगा उन्होंने? पूर्व भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा, उसके माध्यम से शुभ कर्म सातिशय पुण्य का बंध किया होगा और वह सातिशय पुण्य अब फल दे रहा है। तीर्थंकर जो भी हो जन्म लेते हैं ना, एक भी असुंदर नहीं होते, जन्म के साथ वे सुंदर ही जन्मते हैं। अतिशय सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर पाकर के भी तीर्थंकर भगवान कहते हैं मैं शरीर की सुंदरता को लेकर के क्या करूं, ये तो जड़ की सुंदरता है, चेतन की सुंदरता तो अंदर है, मैं उस चेतन की सुंदरता की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे जड़ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, ऐसी भावना भाती। और संसारी प्राणी तीर्थंकरों के सुंदर शरीर को देखकर ऐसी भावना भाते, मुझे ऐसा शरीर मिलता तो कितना अच्छा था। क्या लेन देन उस शरीर से, शरीर सुंदर हो असुंदर हो जड़ वस्तु है ना, उसको लेके क्या करोगे? वो तो क्षणिक है, छूटेगा, नश्वर है। लेकिन आत्मा की सुंदरता एक बार बढ़ गई, आत्मा की सुंदरता एक बार उत्पन्न हो गई तो कभी भी वो छूटने वाला नहीं। खुद की सुंदरता को देखो, ये शरीर की सुंदरता तो पर की सुंदरता है, क्या अपनी सुंदरता है? शरीर पर है क्या अपना है? पर है, तो ये कौन है? ये हमारा नौकर है, हम इस पर आदेश चलाते हैं, ये हमारे ऊपर आदेश चला नहीं सकता, हम जैसा कहेंगे वैसा इसको करना पड़ेगा। साहूकार कौन है? आत्मा। तो कहते समय तो आत्मा को साहूकार बना लेते हैं, लेकिन काम करते समय शरीर को साहूकार बना लेते हैं और आत्मा को नौकर बना लेते हैं। तो ये अनादिकालीन संस्कार हमारे छूटते नहीं, इसका बार बार चिंतन करने पर ये संस्कार मिट सकते। शरीर 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 सुख के लिए सब कुछ किया है, अनंत भवों में देह धारण करके देह के सुख के लिए हमने सब कुछ समय लगाया है, लेकिन आत्म सुख के लिए एक भव में भी हमने प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं किया। आत्मा को बनाने के लिए एक बार भी पुरुषार्थ नहीं हुआ, देह को बनाने के लिए हर बार हुआ है। ये स्थिति है क्या नहीं अपनी? लेकिन तीर्थंकरों ने ऐसा नहीं किया, आत्मा को बनाने के लिए पैदा हो गए, तीर्थंकर पर्याय में जन्म लिए, और तीर्थंकर पर्याय में जन्म लेते ही पहला अतिशय सुंदर शरीर, जन्मते ही ऐसा बालक कि इंद्र देवता भी जब उस बालक को देख लेता है तो अपने मुख को एक मुख से नहीं देखता है, वो दो आंखों से नहीं देखता, अपने हजार आंखें बना लेता है। जैसे रावण युद्ध के काल में 10 मुख बना करके युद्ध कर रहा था ना, वैसे तीर्थंकर बालक के चेहरे को देखने के लिए उन्होंने हजार चेहरे बना लिए, हजार आंखें बना ली और हजार आंखों से देखने लगा। कितना आकर्षित हुआ वो इंद्र। तो भगवान को हम हजार आंखों से देखते हैं तो शुभ कर्म का बंध होगा, हमारा कल्याण होगा, किंतु देखकर हे भगवान आप जैसे ही मैं भी बनू ऐसा ही शरीर मुझे भी मिले इतना कह दिया तो गया, सब चला गया। इंद्र इसलिए देख रहा था भगवान आपके शरीर को मैं देख तो लूं कितना सुंदर है, आप बाहर से इतना सुंदर हो, बाहर की सुंदरता को ही मैं हजार आंखों से देख नहीं पा रहा हूं, तो आपके आत्मा की सुंदरता कितनी होगी उसको कैसे देखूं मैं। ऐसा सम्यक दृष्टि देव इंद्र क्षायक सम्यक दृष्टि विचार करता, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार करते हैं भगवान के पास जा करके, पर मिथ्या दृष्टि जीव भगवान के वैभव को देख करके वैभव ही मांगने लगते जो क्षणिक है और अपने नहीं शरीर के पराए हैं, पर के लिए नौकर की ही चिंता करते हैं। वहां जाने के बाद भी हमारे नौकर के लिए ये मिले, खुद के लिए क्या मिले ये चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी नौकर के लिए ये मिले, कितना प्रेम है नौकर पर। बहुत 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 बार ऐसा हुआ है, अब यही चिंतन करना चाहिए। सामायिक में बैठ करके जब आप नमोकार मंत्र का जाप लगाते हैं, जाप लगाना हो तो 10-15 मिनट जाप लगा लो, एक घंटा अगर समय करते हैं तो कम से कम पौन घंटा इन गुणों पर चिंतन करो, मैंने क्या किया, भगवान ने क्या किया। भगवान ने नौकर की सेवा नहीं की, नौकर को ही अपनी सेवा में लगाया, और हमने क्या किया, भगवान के पास जाकर के भी नौकर को ले गया और नौकर के लिए हम चले गए, मांग के आए। देखो ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मेले में जाते हैं तो आप कभी कभी ऐसा भी होता है खुद को जाने की इच्छा नहीं रहती मेले में, पर बच्चा बोल रहा है इसलिए जाना पड़ रहा है, और बच्चा जाकर के जो मांगता है उसको आप दिलाकर आते हैं घर में, आपको आनंद नहीं आता लेकिन बच्चे को जो आनंद आया वो अलग ही है। तीर्थंकर भगवान के पास क्षणिक वस्तु मांगेंगे मिल तो जाएगा, लेकिन क्या आनंद आया उसमें, कौन सा लाभ हुआ, नहीं। जड़ वस्तु कभी मैं नहीं मांगना, भगवान के पास जाओ लेकिन जड़ वस्तु को मांगने के लिए नहीं जाना। अतिशय सुंदर शरीर, अत्यंत सुगंध शरीर, देखो सुंदरता के अलावा उसमें से बदबू कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आती तीर्थंकरों के शरीर से बदबू, क्योंकि उनका शरीर पसीने से रहित होता है, पानी पीते हैं वो, धूप में भी घूमते हैं, लेकिन पानी पीकर धूप में घूमने के बाद भी उनके शरीर से जरा भी पसीना नहीं आता। तो पसीना ही नहीं आता तो फिर यदि पसीना आ भी जाए तो पसीना भी सुगंधित हो जाएगा, लेकिन पसीना ही नहीं आता तो शरीर के परमाणु वैसे ही ज्यों के त्यों सुगंधित ही बने रहते। शरीर के परमाणु इतने सुगंधित जितना चंदन का वृक्ष, उस वृक्ष के पास जाओ चंदन की गंध आती है, पानी भी उस वृक्ष से टच हो गया तो वो भी सुगंधित होता, भगवान से शरीर से पसीना भी निकला तो सुगंधित होकर के निकलना पड़ेगा। हम लोगों के शरीर जैसा नहीं, हम लोगों के शरीर से बदबू क्यों आती है उसका कारण है कि पूर्व पुण्य तो है ही नहीं, और जो परमाणु से जिन परमाणुओं से शरीर बना है उसमें कोई सुगंधपना है ही नहीं। सुगंधपना आने के लिए पुण्य कर्म का उदय था, पाप कर्म के उदय में अशुभ परमाणुओं से शरीर बना है, और इससे पसीना आएगा तो अशुभ परिणाम परमाणुओं से टच होकर के आएगा, वो भी बदबूदार रहेगा और ये भी बदबू वाला। तो ये अशुभ परमाणु हैं, वो शुभ परमाणु भगवान के सुगंधित सुवास वाले परमाणु, सुगंध शरीर और स्वेद पसीने से रहित शरीर, ये तीसरा अतिशय सामान्य लोगों में ये नहीं होता, इसलिए ये अतिशय ऊपर कहा था लक्षण में, जो सामान्य जीवों में नहीं होता वो भगवान में होता है। तो क्या क्या होता है ये बताया जा रहा है, शरीर का सुंदर होना, शरीर का सुगंधित होना, शरीर का पसीने से रहित होना, ये होता है स्वेद से रहित, स्वेद यानी पसीना, स्वेद यानी पसीना, और मल मूत्र से रहित होना, शरीर मल मूत्र से रहित होता है, खाते हैं पीते हैं सब कुछ होता है लेकिन मूत्र भी नहीं और शरीर में मल भी नहीं, फिर खाया हुआ क्या होता है, सब भस्मीभूत होता है, भस्म हो गया, वो शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया। परमाणुओं को उड़ना हो तो शरीर से वो खिर जाएंगे लेकिन मल मूत्र के रूप में कोई भी परमाणु विसर्जित नहीं होगा, ऐसा शरीर किसको है, किसी को नहीं है, यहां देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहा तीर्थंकरों को देखने का भाग्य भी हर किसी युग में हर किसी का होता नहीं है, वो उस युग में जिस युग में तीर्थंकर पैदा होते हैं उस युग के लोग ही भाग्यशाली होते हैं, नहीं तो अन्य युग के लोग तो तीर्थंकरों के कथा ही सुनते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं जैसे आज सुन रहे हैं, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, कथा ही सुनते हैं, देखने को नहीं मिलते, देखने को नहीं मिलते। देखो मलमूत्र रहित शरीर, भोजन जो सामान्य लोगों का है वही भोजन रहता है, जन के साथ थोड़े बहुत देव लोगों के द्वारा भी होता है लेकिन घर का भी खाते हैं, खाते खाते नहीं, दीक्षा से पहले भी खाते हैं, माता पिता के द्वारा बनाया गया भोजन वो तो वहां से भी आता होगा किंतु घर का बिल्कुल नहीं खाते हो, ऐसा नहीं हो सकता, माता हाँ पच जाता है। देव लोग यदि वहां से लाएंगे तो क्या लाएंगे, कौन सी वस्तु लाएंगे, जिलेबी लाडू लाएंगे क्या, क्या लाएंगे क्या लाएंगे, कल्प वृक्ष से जो खाद्य और पेय पदार्थ होते हैं उन्हीं को ला करके देते होंगे और उनको खाने के बाद मल मूत्र तो होता नहीं, फिर जिससे मलमूत्र नहीं होता ऐसा ही भोजन होगा यदि ऐसा कहेंगे तो, मुनि अवस्था में मलमूत्र होना चाहिए क्योंकि श्रावकों के घर घर आहार होता है उनका, तो अपन जो खाते हैं वही वो खाते हैं लेकिन मलमूत्र नहीं होता, हाँ। अब जन्म के बाद देवों से भी आहार वो लेते हैं कि नहीं, जन्म के बाद किसी को देव लोग आकर के देते हैं क्या, ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जिनको देव लोगों का आहार मिलता है, दिला रहे हैं खा रहे हैं, नहीं होता, इसलिए ये अतिशय अतिशय। और गृहस्थ अवस्था में घर का कुछ नहीं खाते हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खाते हो मुनि अवस्था में तो लेते ही हैं, पर मुनि अवस्था में लेते हैं तो फिर घर में क्यों नहीं ले सकते हैं। अब मुनि अवस्था में घर से ही श्रावक से ही लेते हैं इसमें कारण है, क्या कारण है? तो देवों के द्वारा दिया हुआ आहार मुनि लोग नहीं लेते, अगर लेते हैं तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है। क्योंकि वह उद्दिष्ट है, देव लोग स्वयं कल्प वृक्ष के आहार को नहीं करते, ये क्योंकि कौलाहार है ना? ये कौलाहार है। देवों का आहार कौन सा होता है? मांसाहार, मांसाहार नहीं, मांसाहार। मांसाहार यानी अमृत ही आहार होता है। देव लोग अमृत खाने वाले, अपने कंठ से भोजन तैयार होता है और रिस जाता है, खिसक जाता है, तो वे कल्प वृक्ष के भोजन क्यों करेंगे? कल्प वृक्ष का भोजन देव लोग नहीं करते, उनको भूख लगते ही तत्काल भूख का शमन होता है अमृत आहार से। तो ये अमृत आहार तो मुनि को दे नहीं सकते, क्योंकि वो कंठ में उत्पन्न होता है, और कल्प वृक्ष जो रहते हैं उसका आहार लेकर के आ सकते हैं और मुनियों का आहार करा सकते हैं, लेकिन वो उद्दिष्ट माना जाता है, मुनियों के उद्देश्य लाएंगे, खुद तो खुद के लिए तो बनाएंगे नहीं। ये अतिथि समिभाग की उनको वस्तु नहीं है, ये श्रावक के लिए वस्तु हो सकती है, लेकिन श्रावक के यहाँ कल्प वृक्ष नहीं, उसमें से कुछ हम खा लें और मुनि को भी पड़ा करके दे दें। तो कल्प वृक्षों का आहार कौलाहार है, उसको तीर्थंकर को दे सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं देते देव, क्योंकि वह उद्दिष्ट होता है, और वही यदि मनुष्य देगा तो उद्दिष्ट नहीं होगा। मान के चले देव लोग आकर के किसी श्रावक के यहाँ रख के चले गए, उनको दान में दे दिया, क्या कल्प वृक्ष के पदार्थ, जो भी गुलाब जामुन लाडू चौड़ा जो भी लाए थे, कल्प वृक्ष आए थे उनको रख करके चले गए, वो आप दे दो, आप ले लो, आप खा लो, ऐसा रख करके चले गए। वह श्रावक दे सकता, पर देवों के हाथ से मुनि नहीं लेते। दान में दी गई वस्तु लेकर के किसी मुनि को हम देते हैं तो मुनि ले सकते, क्योंकि उसमें से खुद भी खाएगा और अपन को भी खिलाएगा, ये अतिथि संविभाग होगा, विभाग होगा उसमें। किंतु देवों के हाथ से मुनि अगर लेंगे तो प्रायश्चित है, और देव आप लोगों को देते हैं और उसको हमारे लिए आपने दे दिया, उन्होंने आपको दान में दिया और हमको आपने दान में दिया, तो आपको खाने के लिए दिया था, आपने भी खाया और मुनि को भी दिया, तो ये अनुद्दिष्ट आहार हो गया, अनुद्दिष्ट हो गया, निर्दोष हो गया, तो ऐसा तो लिया जा सकता है। बड़ा बारीक है बड़ा ही बारीक है ये, देवों के हाथ से क्यों नहीं लेते? नहीं गलत है, संयम धार के आप संयमी हैं, मुनियों को आहार दे ही रहे हैं ना, संयमी असंयमी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सभी मुनि को आहार देती है ना। हाँ, उद्दिष्ट अनुद्दिष्ट का सवाल है, यहाँ देव लोग स्वयं नहीं खा सकते इसलिए नहीं दे सकते कल्प वृक्ष के फलों को, ये सवाल है, संयम असंयम का सवाल है। आहार देने का अधिकार तो सबको है, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को, संयमी को, असंयमी को, सबको वो दाता है। अब फर्क इतना ही आएगा कि संयमी दाता हो तो संयमी दाता, असंयमी दाता हो तो असंयमी दाता, सम्यक दृष्टि दाता हो तो सम्यक दृष्टि दाता, मिथ्या दृष्टि दाता हो तो मिथ्या दृष्टि दाता। लेकिन दाता के पास जो होता है वह मुनि के लिए संयम चलाने लायक वस्तु है, और उस वस्तु को लेकर के संयम चलाते हैं। पेट्रोल कहीं भी मिले वो तो गाड़ी में डालना है, वो कहीं भी मिले, कहीं भी किसी के यहां भी, ये देखोगे क्या पेट्रोल दुकान जैन का है क्या, वो उसका है अरे पेट्रोल तो वहां से आता है, कहां से? ज्यादा से ज्यादा बाहर से आता है भारत में। ये अब पांचवा अतिशय है, टाइम हो गया। हित मित प्रिय वचन बोलना, तीर्थंकर भगवान जन्म के साथ ही कभी भी कटु वचन किसी से नहीं बोलते, इतने नरम बोलते हैं और इतने कम शब्दों में बोलते हैं, वो थोड़ा ही बोलते हैं लेकिन उसको सुनते ही सुनने वाले को ऐसा लगता है कि और जरा बोलो आप, और जरा बोलो। उनकी ध्वनि भी मीठी होती है और बोलने की शैली भी मधुर होती है, और कितना बोलते हैं, अल्प बोलते हैं और आकर्षक बोलते हैं। उनके शब्दों को सुनते ही जीव आकर्षक हो जाता है, आकर्षित होता है। ये अतिशय, ऐसा कौन बोलता है? आप जन्म के साथ ऐसे बोलते थे क्या? कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। अब तो बोलो, अब तो जीवन में अतिशय आ जाए, इन अतिशयों को सुन करके अतिशय आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जीवन में संयम जैसा आ जाएगा, अतिशय को सुनकर अतिशय आ जाए। बड़े होने के बाद तो हमें यही ट्राई करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ घर में या बाहर बड़बड़ाना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। पहले बोलने से पहले विचार करना चाहिए कितना बोलना है, थोड़ा बोलना है, क्या कहना है, ये कहना है। तो मधुर शब्दों के साथ, थोड़े शब्दों में मधुरता के साथ, थोड़े शब्दों में थोड़ी ही बात कहना, इससे आकर्षित होंगे परजीव। और ज्यादा बोल करके आएंगे, अरे पागल कोई आया था, बड़बड़ा के चला गया वो, ऐसा कहते हैं पीछे से लोग। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कम बोलना चाहिए। हम भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, 10 मिनट अधिक हो गया। जिनवानी। निस्त्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।